रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये कहा है इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों को सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वो आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है।
साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।
इसकी चमक न मिटे, मेरा संदेश है, एक दूजे से प्यार करो जैसा मैंने तुमसे किया। ये मेरा आदेश है। फल मीठा तुम्हें मिले मुझसे कहो सुनूं तुम्हें, कोई कभी तुमको नहीं चले। प्यार है मोती, प्यार है ज्योति, इसकी धमक न मिटे। ये मेरा आदेश है, संदेश है, एक दूजे से प्यार करो जैसा मैंने तुमसे किया। ये मेरा आदेश है। मैंने तुमसे किया, ये मेरा आदेश है, ये मेरा संदेश।
साथियों, अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों, इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों, आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम युवा और विकास।
सुनिए, द्वंद्व है उनके सामने। लेखक हैं कृष्णकांत दुबे और वाचिका मैं भवानी। भारत युवाओं का देश है, उस युवा के शब्द थे और अब वह 21वीं सदी के प्रथम दशक के अंतिम छोर पर खड़ा है। उसके अर्थात भारतीय युवा के सामने नए भविष्य की अनंत रेखाएं खींची जा रही हैं। उसे किस पथ पर जाना है, इसकी सारी सूचनाएं वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी उसे समय समय पर दे रही है और वह हमेशा इसके लिए तैयार है, तत्पर भी है। जी हां दोस्तों, जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनके अपने बुलंद हौसले हैं, उनके लिए हर द्वार खुले हैं, मुक्त हैं और उनके होठों पर जयगान है। उनके सामने का हर क्षितिज उजला है, उनके सामने कहीं कोई विवशता या लाचारी नहीं है। वे हैं कि वे हर कहीं बिन रुकावट आगे बढ़ जाते हैं। एक बात और भी, आज कई शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं स्वयं अपनी बात कहती युवाओं को आमंत्रित करती हैं कि उनके प्रशिक्षण के लिए वे किन किन विषयों का प्रबंध करती हैं, उनके पास जो प्रशिक्षण सुविधाएं हैं वे किस तरह की हैं, वहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा वर्ग क्या कुछ पा सकते हैं, कौन सी दिशा उनके लिए खुल जाती है, वे किन सेवाओं में जा सकते हैं। आज विश्व में निरंतर नवीन से नवीन प्रौद्योगिकी का विस्तार हो रहा है, हर विषय उनसे जुड़ते जा रहे हैं, उनकी कई कई श्रृंखलाएं हैं, उनमें से युवा अपनी क्षमता अपने ज्ञान के आधार पर किसे भी चुन सकते हैं, बशर्ते उनमें योग्यता हो, हौसला हो। कभी कभी इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए युवा सफलता के जिन शिखरों को छू रहे हैं उसकी जानकारी वे संस्थान संचार माध्यमों के जरिए जन जन तक पहुंचा भी रहे हैं। वे कह रहे हैं, ये हमारे प्रशिक्षण संस्थान की अपनी सफलता है, जिन्हें यह सब प्राप्त करना है हमारे पास आए। हां मित्रों, जो सक्षम है और जो उन विषयों का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वे इसे स्वीकार कर ही लेते हैं। यह इसलिए कि ऐसे प्रशिक्षण संस्थान महंगे हैं जिनमें फीस के रूप में बड़ी राशि वसूली जाती है। जो सक्षम है और जो उस संस्थान में शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वे तो उसे स्वीकार कर ही लेते हैं। स्मरण रहे, 20वीं सदी के अंतिम दशक में इस सब का लगातार विस्तार होना शुरू हुआ था। आज उस विस्तार को देख सब चकित हैं। विगत 20 वर्षों की अवधि में उसने जो गति जो रफ्तार पाई उसे अपने में सचमुच अद्भुत ही कहा जाएगा। देश की पुरानी पीढ़ी यह सब कुछ देख सुनकर चकित है। साथियों, आज भारत के कई कई युवा विदेशों में अपने उस ज्ञान विज्ञान का चमत्कार दिखा रहे हैं, यही नहीं अपने देश को भी विकास की दिशा दे रहे हैं। उसी का लाभ देश को अपनी समृद्धि के रूप में भी मिल रहा है, और यही कारण है भारत ने मंदी की आंधी से अपने को बहुत कुछ बचा लिया, सुरक्षित कर लिया। युवा साथियों, इन सबको प्राप्त करने के लिए उन युवाओं को निरंतर परिश्रम करना पड़ा है, यही नहीं अपने मानसिक विकास को भी निरंतर गति देना पड़ी है, स्वयं में सचेतन रहना पड़ा है। उन्हें या उनके परिवार को इसके लिए धनराशि भी जुटानी पड़ी है। इनमें कई कई हैं जिन्होंने इसके लिए बैंक ऋण का आश्रय भी लिया है ताकि प्रशिक्षण अवधि में भारी रकम फीस की समय अनुसार व्यवस्था कर सकें, तभी उन्होंने इसमें सफलता अर्जित की है। लेकिन मित्रों, भारत में जिस तरह की सामाजिक असमानताएं हैं उसके जो कई स्तर कई आयाम हैं, उन स्तरों आयामों में रहने वाले युवा वर्ग की अपनी अपनी कथाएं भी हैं और व्यथाएं भी। उनमें कई ऐसे युवा भी हैं जो उस चमकीली चमत्कारी दुनिया को देख तक नहीं पाते। कुछ ऐसे भी हैं दोस्तों जो चाहते हुए भी उन चमकीली रेखाओं को छू तक नहीं पाते, क्योंकि वे इसके लिए अपने में क्षमता नहीं रखते। वे जब भी समाचार पत्रों में सूचना माध्यमों में प्रतिदिन नगर बाहर के उन युवा छात्र छात्राओं की तस्वीरों उनकी गतिविधियों के छवि चित्रों को देखते हैं और जो उन शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करते विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं तो अपने में एक विशेष अभाव सा महसूस करते हैं। उनमें कहीं कोई नाराज्य भावना भी उभर आती है। तो मित्रों, इस संदर्भ में एक ऐसे शासकीय कॉलेज के जिसकी सारी इमारत जर्जर हो रही है, वहां के एक युवा छात्र ने उन सुंदर चित्रों को देखकर कहा था, फिर एकाएक स्वप्न भंग हो गया, बिखर गए सारे चित्र कि मैं फिर अकेला हूं। ऐसे में युवाओं की यह मानसिकता स्वाभाविक रूप से उभर आती है और वे अपने अंतर में जिस स्थिति को अनुभूत करते हैं वह सुखद नहीं बल्कि दुखद ही होती है। फिर वे नियति के अलावा किसे दोष दें? सत्य तो यह है कि भारत के युवा वर्ग के सामने कई कई समस्याएं हैं और कई कई समस्याओं से वे जूझ रहे हैं। छोड़िए उनकी बात, जो साधन संपन्न है, लेकिन भारत का अधिकांश युवा वर्ग ऐसा है जो धूप छाही जीवन जीता है। किसी के लिए धूप इतनी तेज कि आगे बढ़ पाना संभव नहीं हो पाता। चले तो पकतलियां में छाले पड़ जाते हैं, जिनके सिर पर छाया है उनमें से कई ऐसे हैं जो उस छाया को छोड़ कहीं जाना नहीं चाहते। इन सब के बावजूद कुछ वे युवा हैं जिन्हें कहीं कोई आशा है कि उन्हें उनकी दिशा मिल जाएगी। वे मार्ग पर चलने का साहस पा जाते हैं, यह जानते हुए कि आगे का मार्ग सुगम नहीं है। मित्रों, इस संदर्भ में यह भी कहने का जी होता है कि जिनके सामने कोई समस्या नहीं होती, अगर उनके सामने कोई समस्या आती भी है तो वह स्वयं उनके अपने द्वारा ही पैदा की हुई होती है। एक युवा ने कहा था, क्या आपने उस सर्वेक्षण को नहीं बांचा जो कुछ समय पहले समाचार पत्रों में दिया गया था कि भारत की आधी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। एक बड़ी संख्या है निम्न मध्यम वर्गीय की जो अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर लेते हैं, और जो सामर्थ्यवान हैं उनका धरातल इतना ऊंचा है कि कोई उन्हें छू तक नहीं सकता। लेकिन हमें उन युवाओं को मानना पड़ेगा जो सचमुच प्रतिभाशाली हैं। न वे धूप की परवाह करते हैं न छांह की। वे यह भी नहीं देखते हैं कि मार्ग सुगम है या कठिन। वे सिर्फ यह जानते हैं कि उन्हें अपना जीवन लक्ष्य पाना है। वे इससे भी परिचित होते हैं, अगर हमने कठिन लक्ष्य चुना है तो कठिनाइयां आएंगी ही। बस उनके कंठ में यही गान होता है, दुर्गम पथ पर बढ़ चले निडर, तम तोम रौंदते हुए कंठ में अचल गान, शीघ्रता शीघ्र लाने को वह स्वर्णिम विहान। हाँ दोस्तों, उनका संकल्प भी यही होता है। उनके जीवन के साथ ही सामाजिक जीवन में सुंदर सुनहरी सुबह हो, दुख दूर हो, हर कहीं मंगल हो, और ऐसे युवा अपने में दृढ़ निश्चयी और स्वयं अपने बूते पर रास्ता बनाने का हौसला रखते हैं। उनमें उत्साह के साथ आत्मविश्वास भी होता है। उन्हें अपना मार्ग कठिन नहीं लगता, उनके कदम उस दिशा में निरंतर बढ़ते जाते हैं। चाहे पढ़ाई कितनी भी सख्त हो, वे अपने मार्ग से डिगते नहीं, इसलिए कि उन्हें मालूम है उनका लक्ष्य कहाँ है और वे जानते हैं उन्हें यह मार्ग किस तरह तय करना है। ऐसे युवा जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं। याद रखें, वे ही युवा इतिहास तक रचने की क्षमता रखते हैं। किसी ने सच कहा है, इतिहास सदैव युवाओं ने ही रचा और बनाया है, बाकी उसमें रंग भरते हैं। पर साथ ही यह भी याद रखें, वे युवा अपने में भले गुणों का पहले ही विस्तार कर लेते हैं, लोग जिनका उदाहरण देते हैं। यही नहीं दोस्तों, उन्हें विनम्र के साथ सहज स्वाभिमानी बनना होता है। वे संकटों का सामना हंसते हुए करने की क्षमता भी रखते हैं। हम जानते हैं आज भी युवा ऐसे हैं जो अपनी मंजिल इन्हीं गुण आदर्शों के आधार पर तय करते हैं, उसे जय करते हैं। किसी ने यह उचित ही कहा है, ऐसे युवाओं को उनके परिवार और हितैषी जनों का थोड़ा भी सहारा मिल जाए तो वे उस प्रोत्साहन को पाकर आगे और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। हमने ऐसे कई माता पिता को देखा है दोस्तों, जो कठिनाइयों के बीच रहते हुए भी अपने बेटे बेटियों के सही विकास के लिए एक अनुकूल सा वातावरण रच देते हैं। यह वातावरण उनके लिए वरदान जैसा ही साबित होता है। बात वर्षों पुरानी है, जब हमने सुश्री एल्सा मैक्सवेल का लिखा उनका जीवन अनुभव बांचा था कि कैसे उनके पिता ने अपने अंतिम समय में सही मार्गदर्शन दे अपनी सही मंजिल दिखाई थी और जिससे उन्होंने अपना जीवन सुखी बनाया था। एल्सा ने लिखा था, पिता ने अपने अंतिम समय मुझे अपने पास बुलाकर कहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़े जा रहा हूं, तुम्हें अपने गुजारे का इंतजाम स्वयं करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें विरासत में तीन बातें, तीन नियम बताकर जा रहा हूं, अगर तुम उनका पालन करोगी तो जीवन में सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, लोग तुम्हें मान्यता देंगे। पहला, लोगों से व्यर्थ नहीं डरना। दूसरा, कभी व्यर्थ की बेजान चीजों का संग्रह नहीं करना। और तीसरा, सबसे पहले अपने पर हंसना। और अंत में एल्सा ने लिखा है, मैंने अपने जीवन में हमेशा इन तीन नियमों का पालन किया और हर तरह से अपने में सुखी जीवन व्यतीत किया। तो मित्रों, यह सही है, अपने में एक ऐसा ही युग था जिसमें कुछ ऐसे ही आदर्श थे जिन्हें अपनाकर जीवन को सफलता देना संभव था, पर ऐसा भी नहीं कि वे आदर्श, वे नियम आज निरर्थक हो गए हैं। लेकिन आज जो नए जीवन मूल्य स्थापित हुए हैं उन्हें भी स्वीकार करना होगा। यह इस युग का अपना एक सत्य है कि हम न तो अतीत को भुला सकते हैं और न उस नवीन को जो इस धरती पर, विश्व समाज पर विस्तार पा रहा है। और यह समन्वय ही देश में नई चेतना का संचार करेगा, और अब तो भारत का युवा वर्ग भी उससे प्रभावित है। यह समय है जब इस युग की कई बातें समाज को स्वीकार करनी होगी कि जो व्यक्ति मन, समाज मन को उज्ज्वलता देती है। आज हर कहीं विज्ञान सम्मत सोच, प्रबंध की नई पद्धतियां, जीवन शैली के बदलते आयाम, थोड़े खुले विचार तथा देश समाज का बदलता राजनीतिक परिवेश, इन सब को देख समझ युवाओं को अपनी दिशाएं निर्धारित करना होगी। भूलना नहीं होगा कि उन्हें अच्छाइयों को ही स्वीकृति देनी है। यह सब कुछ किसी और को भी नहीं, युवा वर्ग को ही करना है। युवा मित्रों, 21वीं सदी का यह प्रथम दशक समाप्ति की सीमा रेखा पर है। इस नई सदी ने विश्व को कई नई आशाएं दी, उत्साह दिया था, उसमें नवयुग का आमंत्रण था, कुछ नवीनता लाने के संकल्प थे। हाँ दोस्तों, बने अगर विभूति तो जो आ रही है पीढ़ियां, बने अगर विभूति तो जो आ रही हैं पीढ़ियां, भविष्य में उन्हें कभी तपन न हो, तपन न हो। मित्रों, इस वर्तमान युग का यही आह्वान है, यही आवाज है, सच है। वर्तमान युवा पीढ़ी के सामने कई द्वंद्व हैं, अंधकार हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, और इसी अंधकार प्रकाश की मिलीजुली छाया है। लेकिन जो शुभ दिशा है, युवा उसे ही ग्रहण करें, बस यही हमारी कामना है। युवा सच्चे और सच्चाई का साथ दें और आगे बढ़ते जाएं। तो ये बात हमारी युवाओं के सामने है कि द्वंद्व है उनके सामने, बिल्कुल सत्य है। अपनी समस्याओं का, अपनी परेशानियों का उन्हें खुद सामना करना होगा, लेकिन कैसे उन समस्याओं से और उस द्वंद्व से बाहर निकलना है, ये युवाओं को तैयारी करनी होगी और समझदारी से उसका सामना करना होगा। तो साथियों, आप संभल जाइए और जब जरूरत पड़े तो ऐसे द्वंद्व से बाहर निकलें।
साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत।
मसीहा तू ही है महान, दे दे हमें प्रभु वरदान।
मसीहा तू ही है महान, दे दे हमें प्रभु वरदान।
अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है RVA हिंदी। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVAHindi। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है RVA हिंदी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है RV ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो RVA मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए RVA हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।